ओम शांति। आज नई मुरली चालू करेंगे। 25 जनवरी 1994। ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है, इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींचने का कलम देने वाले भाग्य विधाता बाप भाग्यवान विशेष आत्माओं प्रति बोले। आज बाप दादा अपने सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। रामानुसार आप आत्माओं का कितना विशेष पाठ नुंदा हुआ है। आज बाप दादा हरेक बच्चे की विशेषताओं को देख हर्षित हो रहे हैं। हरेक बच्चे को देख वाह बच्चे यह स्नेह का गीत दिल में बज रहा था। साथ साथ यह भी देख रहे थे कि बच्चों के दिल में ये वाह वाह का गीत सदा निकलता है। हर कर्म में हर कदम में हर संकल्प में यह श्रेष्ठ अनुभव होता है व कभी कभी होता है। साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा स्वतः रहती है व वृत्ति लाने से अनुभव होता है। जब जीवन है तो जीवन का अर्थ ही है सदा और स्वतः रहे। स्मृति में लाया तो अनुभव किया और स्मृति में नहीं लाया तो विशेषता के बजाय साधारण जीवन अनुभव हो। यह आप विशेष आत्माओं की विशेषता नहीं है। ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। जिसका जन्म ही विशेष है उसका जीवन क्या होगा, विशेष होगा या साधारण। ब्राह्मण जन्म भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ और ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ, क्योंकि ब्राह्मण जन्मदाता ब्राह्मण धर्म स्थापक सर्वश्रेष्ठ परमात्मा और अनादि आत्मा ब्रह्मा बाप है। तो जैसे रचता सर्वश्रेष्ठ है तो रचना भी सर्वश्रेष्ठ अर्थात विशेष है। ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है, क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए आप सबके सामने आदि आत्मा ब्रह्मा बाप सैंपल है। कर्म में फॉलो साकार ब्रह्म बाप को करते हो, इसलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाले ब्राह्मा ब्रह्मा गाया हुआ है। भाग्य की रेखा का कलम कर्म है। भाग्य की रेखा का कलम का या की तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल ब्रह्मा बाप है, इसलिए आप सभी विशेष पुरुषार्थ का शब्द यही वर्तन करते हो कि बाप समान बनना है। तो बाबा कह रहे हैं आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। रामानुसार आप आत्माओं का कितना विशेष पाठ नुंदा हुआ है। ख्याल ख्वाब में भी नहीं था ऐसा पाठ निंदा हुआ है। आज बाप दादा हरेक बच्चे की विशेषताओं को देख हर्षित हो रहे हैं। क्या विशेषता है, भगवान को जान लिया, साधारण रूप में आए हुए परमात्मा को जाना पहचाना और
जन्म दिया उसकी विधि
भी मुख से जन्म हुआ है। विशेषता विशेषता है क्या है, एक एक हर एक बच्चे की विशेषताओं को देख हर्षित हो रहे हैं। कोई ना कोई गुण है, गुणवान है और दिव्य बुद्धि है। दिव्य बुद्धि से ही बाप को जाना जा सकता है, उसके कार्य में सहयोगी बने। तो वो समर्पण भाव है, वो महासंकल्प है समर्पण का। चलो वो भी एक, पर विशेषता है क्या क्या, विशेषता है त्याग की विशेषता है। ऐसा त्याग उसको और कहीं नहीं मिला जो इनमें मिला। तो उनमें त्याग है, उनमें तपस्या है उनमें दिव्य गुण है, उनमें सेवा भाव है और आज्ञाकारी है, साधारण है, भोले भाले है, गुप्त है, गुप्त रहना चाहते हैं पर वो रहने नहीं देता। और पहले से हिम्मत थी, उसने जाना कि मैं जो श्रीमत देने वाला हूँ ये उस पर चल सकेंगे। अनन्य भक्त थे, शुद्ध थे, पवित्र थे, पवित्रता की शक्ति धारण करने की इनमें शक्ति थी। तो बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषताओं को देख हर्षित हो रहे हैं, वो अभी के संस्कार को नहीं देख रहे हैं, मध्य की बात को नहीं देखता है, जो अनादि आदि संस्कार है वो ये देखता है कि ये वही आत्मा है जो कभी देवता थी, वो उस स्वरूप को देखता है। इसके लिए उसको विशेषताएं नजर आती है। हर एक बच्चे को देख, वाह बच्चे, यह स्नेह का गीत दिल में बज रहा था, मुख में नहीं, केवल उसके दिल में ये आवाज निकल रही थी कि ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली बच्चे है। इसके लिए उसके दिल से गीत निकलता है। साथ साथ यह भी देख रहे थे कि बच्चे को, बच्चों के दिल में भी वाह वाह का गीत सदा निकलता है। किसमें निकले? हर कर्म कदम संकल्प में ये श्रेष्ठ अनुभव होता है या कभी कभी होता है। तो हर कर्म, हर कदम, हर संकल्प, साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा स्वतः रहती है और स्मृति लाने से अनुभव होती है। जब जीवन है तो जीवन का अर्थ ही है सदा और स्वतः। तो नया जीवन मिला ना, तो वो कैसा रहना चाहिए? सदा और स्वतः। स्मृति में लाया तो अनुभव किया, और स्मृति में नहीं लाया तो विशेषता के बजाय साधारण जीवन अनुभव हो, या विशेष आत्माओं की विशेषता नहीं है। स्वतः ही याद रहे कि हम विशेष हैं, इतना वो रगों में समा जाए, वो विशेषता जैसे कि हमारी रक्त की तरह धमनियों से बहे। ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है, जन्म ही विशेष जन्म है। कई लोगों का गुरु के द्वारा जन्म होता है, आजकल वो लोग उसकी वीडियो भी रखते हैं कि कैसे गुरु उनको जन्म दे रहा है। गुरु से जब दीक्षा ली जाती है वो विशेष प्रोग्राम होता है उसका, वो जन्म दिवस मनाते हैं। कोई कोई गुरु उनके ऊपर फूल बरसाते हैं, वो नीचे बैठे रहते हैं आज्ञाकारी स्थिति में, हाथ जोड़े हुए, और गुरु ऊपर से फूल बरसाता है, तो उनके लिए वो यादगार होता है। या मंत्र दीक्षा जब होती है किसी की, मंत्र देते हैं ना गुरु, वो भी यादगार दिन होता है, उसका विशेष सेलिब्रेशन होता है, तो वो विशेष जन्म है। तो ये जन्म कैसा है? ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। अभी तो बच्चा बड़ा ही नहीं हुआ है, खाली जन्म हुआ है, पर वो जन्म ही इतना विशेष है। जिसका जन्म ही विशेष है उसका जीवन क्या होगा? विशेषताओं से परिपूर्ण। तो जन्म ही विशेष है, विशेष होगा या साधारण होगा? ब्राह्मण जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ। तो हमारा जन्म, धर्म और कर्म सब कुछ महान है। क्योंकि क्यों महान है? क्योंकि जन्मदाता कौन है? ब्राह्मण जन्मदाता, ब्राह्मण धर्म स्थापक, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप है। तो जैसे रचता सर्वश्रेष्ठ है तो रचना भी सर्वश्रेष्ठ अर्थात विशेष है। जिसके द्वारा जन्म हो रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है। बाबा ने कभी कहा है ना, मैंने तुम बच्चों को अपने ज्ञान के गर्भ में धारण किया है। कभी आया है साकार, मैंने तुम्हें अपने ज्ञान के गर्भ में धारण किया है। ब्राह्मणों का कर्म विशेष कर्म विशेष क्यों है, कर्म क्यों विशेष है? क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए आप सबके सामने आदि आत्मा ब्रह्मा बाप सैंपल है। वो आदि पिता है तो आप मास्टर आदि देव है, मास्टर आदि रत्न है, कुमारों से कहा है बाबा ने अभी अभी। ये यदि याद रहा तो क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे, मुश्किल नहीं लगेगा कुछ भी। तो कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हो, इसलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाले वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। भाग्य की रेखा का कलम कर्म है, भाग्य की रेखा का कलम कर्म है, तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल ब्रह्मा बाप है। इसलिए आप सभी विशेष पुरुषार्थ का शब्द यही वर्णन करते हो कि बाप समान बनना है। इस अव्यक्त वर्ष में सभी का लक्ष्य क्या रहा? निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान अशरीर स्थिति का अनुभव किया, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का नंबरवार अनुभव किया। तो विशेष जीवन का आधार विशेष जन्म धर्म और श्रेष्ठ कर्म है। जैसे उदाहरण कौन सा दे रहे हैं बाबा, हमेशा कौन सा देते हैं जन्म के लिए? विशेष जन्म है हमारा, श्रेष्ठ बाप द्वारा जन्म हुआ है और वो स्मृति स्वतः रहनी चाहिए, नेचुरल रहनी चाहिए, जैसे कि उनकी नेचुरल रहती है। किनकी? किनकी? छोटे बच्चों की। और बाबा राजपूतों का उदाहरण देते हैं ना इसमें, यहाँ भी वैसे ही। जैसे लौकिक जीवन में भी अगर किसी आत्मा का जन्म विशेष राज परिवार में हो, राजकुमार हो या राजकुमारी हो, तो यह विशेषता जन्म की होने के कारण हर समय सदा और स्वतः रहता है। वह बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमारी हूँ, निरंतर याद रहता है, सहज याद होता है ना। पुरुषार्थ करते हैं क्या? चाहे कर्म अपनी रुचि के कारण कितना भी साधारण हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता भूल जाते हैं क्या? नेचुरल और नेचर बन जाती है। तो ये जो स्मृति है इसको नेचुरल और नेचर बनाना है। नेचुरल अर्थात सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक। इतनी सहज स्मृति हो, स्वाभाविक स्मृति हो कि हम कौन है। तो ये इसको गहराई से अनुभव करना है। नेचर आदत स्वभाव। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की नेचर क्या है? विशेष है या साधारण है? अभी भी कोई कोई बच्चे जब कोई साधारण कर्म कर लेते हैं तो बाप दादा के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं? कर लिया साधारण कर्म तो बाबा को क्या कहते हैं? फिर हो गया और अभी पुरुषार्थी है, आदत है पहले से। और ऐसे कर्म कर लेते हैं साधारण कर्म, बाबा ने कहा है हर कर्म विशेष, हर संकल्प हर बोल हर कर्म विशेष, पर कर लिया साधारण कर्म और बाबा ने पूछा तो बाबा को स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए माया आ गई थी। चाहता नहीं था पर हो गया, क्या करूं, परवश हूँ, शक्ति नहीं है, पावरफुल नहीं है आत्मा। हाँ बड़ों से भी हो जाता है। हमने किया तो क्या हुआ, सबसे होता है। स्वयं को निर्दोष सिद्ध करना, निर्दोष, बाबा दोष नहीं लगा रहे परंतु निर्दोष सिद्ध कर रहे हैं। हर अपराधी अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि मैं निर्दोष हूं। किसी भी कोर्ट में जाओ तो जो कटघरे में खड़ा है वो हमेशा एक ही वाक्य कहता है कि मैं निर्दोष हूं, चाहे उसका फैसला भी हो गया फिर भी अंत तक वो एक ही बात कहेगा कि मैं निर्दोष हूं। मराठी में एक नाटक है तो मी नवेस। इतने रूप बदलता है और कितने लोगों को फंसाता है, परंतु जब उसको खड़ा करते हैं कि भाई तुमने ये रूप बदला, स्त्री को स्त्री के गहने चुरा दिए, ये रूप बदला, उसके पैसे लूट लिए, वो कहता है वो सब तो ठीक है पर वो मैं नहीं हूं, तो मी नवेच। वो चाहे जो भी कहो, तो ऐसे 10 कितने सारे केसेस दिखाए उसने, वो हर बार अलग अलग रूप धारण करता है और हर एक को कुछ ना कुछ, किसी से किसी के पैसे, किसी के कुछ तो किसी के कुछ, पर अंत तक ये एक ही बात कहता है, तो मी नवेच, तो मैं निर्दोष हूं। सिद्ध करना, सिद्ध करना ये बात। मैं चाहता नहीं था, वो चाहती नहीं थी कि ये कर्म करूं, ये फिर भी ठीक है, लेकिन मेरी नेचर, कम से कम स्वीकार तो कर रहे हैं, इसलिए हो गया। वैसे ये कहना व सोचना यथार्थ है क्या? ये यथार्थ है कि हो गया? मैं कौन? ब्राह्मण जीवन वाले हैं ना, तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच सकती है कि ये मेरी नेचर है? क्या यह राइट है? तो उस समय क्यों बोलते हो? कल परसों भी आया था किसी दूसरे संदर्भ में, जज फॉर योर सेल्फ, स्वयं जज करो, तो शास्त्रों के लिए था पर यहां पर भी लागू हो सकता है। क्या मैं राइट हूं? क्या बाप राइट है या शास्त्र राइट है? पर ये वैसी बात है, जज फॉर योर सेल्फ, क्या ये राइट है? तो उस समय क्या बोलते हो? उस समय ब्राह्मण नहीं बोलता,
ज्ञान
माया बोलती है, माया की प्रवेशता है उस आत्मा में, वो बोलती है उस समय। तो जैसे ये साधारण नेचर और मायावी नेचर नेचुरल काम कर लेती है, इसलिए कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। ऐसे कौन कौन से कर्म हैं कि जो हम चाहते नहीं हैं परंतु हो जाते हैं? है कोई ऐसे कर्म? बहुत सारे। उसकी एक लिस्ट बनाए कि जो हम चाहते तो नहीं थे परंतु हो गया। बोलना नहीं चाहते, मजाक मजाक में, कल हम मजाक का पढ़ रहे थे, एक मजाक मजाक में बोल दिया परंतु वो मजाक किसी को मजाक नहीं, कुछ और लग गया, अब विनोद में वो विरोध हो गया, रमणीकता में रणप्रियता आ गई, युद्ध में घुस गए। तो मजाक मजाक में बहुत सारी चीजें हो जाती है, जो हम चाहते नहीं थे हो जाते हैं। हमारा लक्ष्य जोगी बनना है, जोकर बनना नहीं है। तो उसकी लिस्ट निकालो, कौन से ऐसे कर्म है जो चाहते नहीं थे, कौन से ऐसे बोल है जो चाहते नहीं थे, कौन से ऐसे संकल्प है जो चाहते नहीं थे। संकल्प फिर भी ठीक है, बोल, क्योंकि बोल एक बार निकल गए वो वापस नहीं आ सकते। तो ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए। तो हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विशेष, श्रेष्ठ, महान, नेचुरल चीज सदा रह सकती है। तो विशेष जीवन की स्मृति नेचर के रूप में नेचुरल होनी चाहिए, वह कभी भूलना, कभी याद होना, तो सदा स्मृति स्वरूप में रहो, स्मृति लाने वाले नहीं, स्मृति स्वरूप। एक है बार बार याद दिलाना स्वयं को, एक है उसका स्वरूप बनना, इसलिए बाप दादा देख रहे थे। अव्यक्त वर्ष समय प्रमाण समाप्त हुआ, लेकिन बाप दादा समान स्वयं को संपन्न बनाया, हर अव्यक्त वर्ष का विशेष लक्ष्य रखा कि अव्यक्त अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना, वो बनाना है। सभी ने यह लक्ष्य रखा था, फिर रिजल्ट क्या निकली? अपने आप को चेक किया, फरिश्ता भाव का वरदान भी वरदाता से मिला, तो वरदान और लक्ष्य दोनों की स्मृति से कहां तक सफलता अनुभव की, ये सूक्ष्म चेकिंग स्वयं की। वह ये सोचा कि अव्यक्त वर्ष पूरा हुआ, यथाशक्ति जितना भी अनुभव किया उतना ही ड्रामानुसार ठीक रहा। वर्ष परिवर्तन के साथ साथ स्व परिवर्तन की गति क्या रही, इस विधि से चेक किया, तो लक्ष्य को बहुत मान रखना है, लक्ष्य हमारा बहुत ऊंचा हो, बहुत ऊंचा। जो स्टूडेंट केवल पास होने का लक्ष्य रखता है वो क्या होता है? फेल। परंतु जो फर्स्ट आने का लक्ष्य रहता है वो कम से कम पहले 5 में तो आएगा। तो लक्ष्य को बहुत ऊंचा बनाना है। बाबा ने कहा 108 में आने का लक्ष्य रखो, अगले संडे की मुरली है, तुमको लक्ष्य रखना है 108 में ही आना है। हाँ जीवन भाई ठीक है ना, 108 में आने का लक्ष्य रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, 16,000 भी नहीं, लक्ष्य तुम्हारा इतना ऊंचा हो तो पुरुषार्थ फिर वैसा होगा। अगर लक्ष्य ही ढीला ढाला है, लक्ष्य तो किसी का है ही नहीं, कहीं तो कहीं ऐसे है कि जिनका लक्ष्य ही नहीं है, क्यों पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, बस कर रहे हैं, बस ठीक ठाक चल रहा है। मतलब ब्राह्मण जीवन का वो पुरुषार्थ एक तरफ है, बाकी जो उसके जो लक्ष्य है खान पान और वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें ज्यादा तल्लीन है आत्माएं, लक्ष्य जो है उसकी तरफ ध्यान कम है। लक्ष्य आंखों के सामने हो, लक्ष्य की बार बार स्मृति हो, कहाँ पहुंचना है, हम कहाँ जा रहे हैं, वो भूलते ही पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। तो जैसे वर्ष समाप्त हुआ वैसे स्वयं लक्ष्य और लक्षण में संपन्न बने, और ये सोचते हो कि इस वर्ष में और बन जाएंगे। समय और स्वयं की गति समान रही, वैसे तो समय से भी स्वयं की गति तीव्र होनी है, क्योंकि समाप्ति के समय को लाने वाली आप विशेष आत्माएं निमित्त हो। तीव्र गति से वर्ष तो संपन्न हो गया, मालूम हुआ वर्ष कैसे पूरा हो गया तो चेक करो, मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तीव्र रही या कभी तीव्र कभी मध्यम रही। तो क्या कहा इसमें कि अव्यक्त वर्ष में क्या लक्ष्य रखा? निराकार स्थिति एक तो, और साकार ब्रह्मा बाप के कर्म में ब्रह्मा बाप समान कर्म। तो ये विशेष जीवन का आधार ही विशेष जन्म है, विशेष धर्म है और विशेष कर्म है। तो हमारा हर कर्म विशेष हो और श्रेष्ठ हो, वो तभी होगा जब वो श्रीमत प्रमाण होगा, वो तभी होगा जब हमको श्रीमत पता होगी, वो तभी होगा जब हम श्रीमत ढूंढे क्या है, इस कर्म के लिए क्या श्रीमत है, इस कर्म के लिए क्या श्रीमत है। वो तभी होगा जब पूरा अटेंशन पढ़ाई पर हो। कितना टाइम देना चाहिए देवेंद्र भाई कल की मुरली में पढ़ाई के लिए? कितना कहा बाबा ने? नहीं, पढ़ाई के लिए कल कहा है पूर्णिमा बहन, आधा पौना घंटा देने से हो जाएगा, बाबा ने कहा कल की मुरली सुबह की, आधा पौना घंटा से होता है क्या? पर आधा पौना घंटा तो इधर से सुना और गया। आधा पौना घंटा तो फर्स्ट रीडिंग मुरली की, पहले एक तो सुनना फिर उसकी फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में तो थोड़ा थोड़ा पता चलता है क्या है उसका, फिर सेकंड रीडिंग, उसमें से कुछ निकालना माल। हाँ मुरली कोई एक बार पढ़ने वाली, पढ़ने से समझने आने वाली चीज नहीं है, उसमें कम से कम 20 से 25 अलग अलग पॉइंट्स होती है, अलग अलग, जिस पर कि चिंतन किया जा सके, जिस पर एक एक वाक्य पर थीसिस लिखा जा सके, इतना बड़ी बड़ी मोटी किताब लिखी जा सकती है एक एक लाइन पर, केवल एक लाइन पर इतना उसका विस्तार किया जा सकता है। ऐसे कम से कम 20 से 25 अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं, कभी उसमें भक्ति का पॉइंट रहेगा, कभी उसमें सत्संग का पॉइंट रहेगा, कभी उसमें गंगा पतित पावनी है या नहीं है, ये भी एक रिसर्च का सब्जेक्ट है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। पर वो तो आता है और कब चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। मुरली सुनते समय तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता है, और पढ़ते समय थोड़ा सा पता चलता है कि ऐसे पॉइंट आए थे। तो एक पौन एक घंटे से कुछ नहीं होता है। हाँ एक ही पेज होनी चाहिए, या एक ही मुरली 2 दिन चले तो भी अच्छा है, या फिर कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ थोड़ा अव्यक्त वाणी अगर रोज चले और एक दिन साकार वाणी, तो वो अव्यक्त में तो, क्योंकि अव्यक्त जो होती है उसमें एक लिंक तो होती है, मतलब साकार में कई सारे पॉइंट्स होते हैं। रोज अव्यक्त वाणी, संडे को साकार वाणी। परंतु वो पचाने के लिए भी इतनी भारी भोजन है, पर अव्यक्त वो फिलोसॉफिकल स्टडी है, ये थोड़ा ग्रेजुएशन है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी है अव्यक्त वाणी। परंतु जितना समय हमको देना चाहिए, क्योंकि उसी में से श्रीमत पता चलेगी, और जब तक हमारे बुद्धि में ज्ञान नहीं है तब तक कर्म श्रेष्ठ नहीं हो सकते। हाँ, यहाँ क्योंकि साकार में लोगों को लगता है साकार में क्या है, वही वही तो बातें, आत्मा समझ बाप को याद करो, वही 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 चीजें, ऐसा नहीं है। उसमें जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है। बाबा ने कहा है ना 21 जनवरी 1969 की मुरली में कि पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, अभी अभी आगे रिवाइज कोर्स है, पढ़ाई पूरी हो चुकी है। ब्रह्मा साकार वाणियों के द्वारा ही संपूर्ण बना है, वो ज्ञान वहां संपूर्ण है उसी में, ये तो खाली उसका एक्सप्लेनेशन है, वो कैसे आचरण में लाए उसके लिए उसका विस्तार है। तो इसमें बहुत ज्यादा गहराई है, एक ही वाणी अगर 2 दिन भी पढ़े तो भी बहुत है, एक ही, क्योंकि उसमें पॉइंट्स कितनी सारी है, एक एक पॉइंट पर चिंतन की जरूरत है, छोटी से छोटी पॉइंट के ऊपर। कभी बाबा कहते हैं कि योग में शक्ति है, ज्ञान में शक्ति नहीं है, कली था, और पढ़ाई में शक्ति है कितनी, उसमें ये पकड़ में आता है, फिर यहाँ ऐसा, यहाँ वैसा, यहाँ वैसा, यहाँ वैसा, यहाँ वैसा, वहां वैसा, वो एक बार पढ़ने से तो पकड़ में आता ही नहीं। हाँ, इस तरह से अलग अलग आते हैं। तो नेचर बन जाए, नेचुरल बन जाए, ठीक है। और जो वरदान है फरिश्ता भाव का, वो भी जैसे कि अनुभव में आ जाए, और लक्ष्य हमारा श्रेष्ठ हो, निरंतर ये याद हो कि मैं कौन। अगर ये कहते हो कि चाहते नहीं था हो गया, तो ये भी जैसे आप नहीं बोल रहे हो, माया बोल रही है, ये विस्मृति है। तो बाबा का तो लक्ष्य ही है हमें जगाना, जागृत अवस्था में रहना, यही हमारा लक्ष्य है। सारा दिन भर मूर्छित नहीं होना है, मूर्छित हुए कि गिरे, मूर्छित हुए कि गड्ढे में गिरे। जो व्यक्ति होश में है वो कभी नहीं गिरता है, उसको कहो ये गड्ढा है गिरेगा क्या, कभी नहीं गिरेगा। जब मूर्छित होते हैं तब हम गिरते हैं। गिरना अर्थात संकल्पों का भटकना, गिरना अर्थात बोल में श्रीमद के विरुद्ध, गिरना अर्थात कर्म कुछ विपरीत श्रीमद के, निरंतर डालते रहना। वो जो जगदीश भाई जैसे कहते हैं ना, वो जो दिया है दिन भर वो एकदम बुझ ना जाए, थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब वो जो लौ है वो जलती रहे। तो चेक करो मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन, फिर समय के लिए अंत में कहा कि समय और आप, समय से भी हमारी गति तीव्र हो। तो मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तीव्र रही या कभी तीव्र कभी मध्यम। तो आज सारे दिन हम ये याद रखेंगे कि मैं एक विशेष आत्मा हूँ, मेरा जन्म विशेष है, कर्म विशेष है, धर्म विशेष है, और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जहां पर हम चाहते नहीं है पर वो हो रही है। ऐसी अगर कोई बातें है ये जो हमें भी पता है नहीं होनी चाहिए फिर भी हो रही है, उसकी एक कम से कम 2 या 3 बातों की लिस्ट, खाली 3, ज्यादा नहीं, 3 बातों की ऐसी एक लिस्ट बनाए और उन्हें ठीक करें।